हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग मिलकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज सब आपका संध्या जागृति कार्यक्रम में, तारीख आज 11 मार्च के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। और बहुत खुशी की बात यह है कि आज से केवल 5 दिन के बाद रविवार के दिन श्री गौर पूर्णिमा का उत्सव है। आप जानते हैं ना सब लोग, श्री गौर पूर्णिमा जो है श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहा गया है। तो गौर पूर्णिमा का मतलब वो दिन जिस दिन श्री कृष्ण भगवान भक्त अवतार लेकर जन्म लिया, गौर अवतार। श्री कृष्ण भगवान नीले रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं, राधा रानी गौर वर्ण की है। तो राधा रानी का प्रेम लेकर श्री कृष्ण भगवान उनका ही कांति धारण करके आते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है कि जो भगवान धनुष लेकर राम बनकर आते हैं और लीला करते हैं, रावण को मारते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, बहुत सारे राक्षसों की सेना को मारते हैं, जो भगवान वराह देव बनकर हिरण्याक्ष को मारते हैं, जो भगवान नरसिंह भगवान बनकर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, इतना भयंकर राक्षस का वध करते हैं, आधा नर आधा सिंह का शरीर लेकर आते हैं, शस्त्र लेकर आते हैं, वध कर देते हैं। कृष्ण बनकर आते हैं और चक्र से कितने लोगों का वध करते हैं, गदा से वध करते हैं, धनुष से वध करते हैं, बिना शस्त्र के भी बहुत लोगों को मार देते हैं, है ना। वृंदावन में कोई शस्त्र उन्होंने यूज़ नहीं किया है, वृंदावन में तो केवल एक मुक्का मारा है या पैर घुमाया है, ऐसे ही हाथ लगाया है पैर लगाया है और सबका वध कर दिया है। वृंदावन में तो उन्होंने किसी भी राक्षस को कोई शस्त्र लेकर ही मारा है। तो हर अवतार में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हर अवतार में वो दुष्टों का नाश करते हैं। तो वही भगवान जो हर अवतार में अलग अलग रूप धारण करके, अलग अलग शस्त्रों को धारण करके राक्षसों का विनाश करते हैं, वो इस अवतार में कोई शस्त्र अस्त्र लेकर नहीं आए। इस अवतार में केवल प्रेम का संदेश लेकर आए। क्यों ऐसा लगा उनको कि भाई हर अवतार में मैं सबको मारने के लिए आता हूँ, मारता भी हूँ, चलो एक अवतार ऐसा लिया जाए कि किसी को नहीं मारूंगा, ऐसा उन्होंने क्यों निर्णय लिया? क्या वो वजह थी जिसकी वजह से उनको लगा कि एक अवतार ऐसा होना चाहिए? इसका कारण है भक्तों का प्रेम, राधा रानी का उन पर जो प्रेम है वो उसका कारण है। ये बात बहुत ही रहस्य की बात है। विश्व में 650 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 1 करोड़ लोगों को भी पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। कारण क्या उसका? क्योंकि ये छन्न अवतार है। छन्न अवतार का मतलब होता है जो छुपा हुआ है, इसको छुपाया गया है और छुपा के रखा गया है, गुप्त अवतार कह सकते हैं उसको। भगवान भी कभी कभी सोचते हैं कि मैं हर बार भगवान बन के आता हूँ, एक बार भगवान बन के नहीं भक्त बन के आऊँगा। तो ये अवतार उनका ऐसा विशिष्ट अवतार है जिसमें वो भक्त बनकर आए हैं, भगवान बनकर नहीं आए। जब किसी वक्त लोगों ने उनको भगवान पुकारा तो उन्होंने कान पे हाथ रखा, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। इसलिए इस अवतार को छन्न अवतार कहा गया है। इस अवतार का रीज़न क्या है ये आपको बताना चाहता हूँ मैं आज। राधा रानी जब भगवान पर प्रेम करती है, कृष्ण भगवान पर, सभी गोपियाँ भगवान पर प्रेम करती है, माता पिता नंद महाराज यशोदा माई बड़ी गोपियाँ सब उन पर प्रेम करती है, लेकिन इसमें से कोई भी व्यक्ति श्याम सुंदर भगवान है इसलिए उन पर प्रेम नहीं करते, कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो कोई जानते नहीं कि ये भगवान है। जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में आए, जन्म लिया उन्होंने, तो वृंदावन में जितने भी भक्त थे उनमें से किसी को पता नहीं था कि ये भगवान है। उनको केवल श्याम सुंदर पर, क्योंकि वो श्याम सुंदर है इसलिए प्रेम था, कोई स्वार्थ नहीं था। भई आप लोग अमीर हो तो मैं प्रेम करूँगा तो नौकरी मिलेगी, थोड़ा पैसा मिलेगा, हाँ बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा बड़ा बड़ा, कोई हेतु नहीं था मन के अंदर, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि व्यक्ति है कौन, बस ये हमारा श्याम सुंदर है इसलिए उन पर प्रेम करते थे। जब कृष्ण भगवान श्याम सुंदर जी जब राधा रानी को देखते थे तो एक बार और अनंत बार कई बार उनको एक बात ध्यान में आई कि जब वो मुझ पर प्रेम करती है या गोपियाँ मुझ पर प्रेम करती हैं तो मुझसे अधिक उनको आनंद मिलता है जब वो मुझ पर प्रेम करते हैं। तो ऐसी वो क्या चीज़ है जो मुझे भी उसका अनुभव नहीं होता, वो सब लोग मुझ पर प्रेम करते हैं, लेकिन जब मुझ पर प्रेम करते हैं मेरी सेवा करते हैं तो मुझको जितना आनंद मिलना चाहिए उससे कई गुना आनंद मेरी सेवा करने में और प्रेम करने में उनको मिलता है। ये बात उनको समझ में आया, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। जैसे कोई पत्नी किसी पति की सेवा करती है ना तो पति को तो आनंद मिलता ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सेवा करता है उसको सेवा करने वाले से भी, इसकी सेवा होती है उससे भी ज़्यादा आनंद मिलता है वो सेवा करने में। ये बात भगवान के ध्यान में आई और भगवान ने सोचा कि मैं उस आनंद को अनुभव करना चाहता हूँ जो राधा रानी अनुभव करती है मेरी सेवा करके, क्योंकि राधा रानी को जो अनुभव होता है वो मुझे नहीं होता है, मैं अलग हूँ वो अलग है, लेकिन एक बात निश्चित है कि राधा रानी जो अनुभव करती है मेरी सेवा करने से वो अनुभव मुझे प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं अभी उनका भाव लेकर अवतार लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो भक्त है इसलिए मैं भक्त बनकर आना चाहता हूँ और मैं भक्त बन के भगवान की सेवा करूँगा, मतलब मैं खुद भगवान हूँ लेकिन फिर भी मैं कृष्ण जगन्नाथ इनकी सेवा करूँगा और भक्त बनकर सेवा करने से ये प्रेम का अनुभव मैं खुद करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो प्रेम है यही सबसे बड़ा वस्तु है जीवन में। हम सब लोग काम करते हैं, है ना, बहुत सब लोग, कोई घर में काम करता है, कोई बाहर काम करता है, कोई बिना नौकरी करके घर बैठता रहता है, फिर भी घर में तो सेवा होती है ना, सब लोग काम करते रहते हैं, याद रखना इस बात को, कोई भी काम करने से फ्री नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब लोग सेवा कर रहे हैं, किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, जिसको कोई सेवा करने को नहीं होता वो कुत्ते की सेवा करता है, घर में कुत्ता पालता है, क्यों, क्योंकि उसको भी कोई प्रेम करने वाला चाहिए व्यक्ति। कभी कभी सोचता है आदमी कि वो पति और पत्नी होने के बजाय कुत्ता होना अच्छा है, तो कुत्ता जब आपसे प्रेम करता है तो वो सोचता नहीं कि आप दारू पी के आए हो या चोरी करके आए हो या शराब खा के आए हो या नशा करके आए हो या जुआ खेल के आए हो, कुत्ता जैसे भी आप आते हो वैसे आपसे प्रेम करता है। आप जल्दी आएंगे तो पत्नी खुश रहती है, लेट आएंगे तो पत्नी गुस्सा करती है, लेकिन लेट आने पर कुत्ता फिर प्रेम ही करता है अपने ऊपर, वही दुम हिला के आता है। आप 11 बजे आओ 12 बजे आओ रात को, शराब पी के आओ या मत पी के आओ, जब भी आप आओगे तो कुत्ता आपको आके प्रेम करेगा। इसलिए बहुत लोग अमेरिका में सोचते हैं कि पति पत्नी रखना ज़रूरत नहीं है, एक कुत्ता रखो और उससे आराम से रहो साथ में। इसलिए अमेरिका के कल्चर के अंदर कुत्ते का बहुत बड़ा स्थान है, वो लोग कुत्ता मरेगा तो बहुत रोते हैं लेकिन रोज़ गाय को मारते तो रोते नहीं, ऐसा उनका भयंकर कल्चर है, लेकिन फिर भी सब लोगों को प्रेम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए। आदमी विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि वो किस पर प्रेम करते रहता है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर उसका प्रेम है, उसके लिए वो मेहनत करते रहता है। बच्चा है, कोई बच्चे को पढ़ाना है, उसको भाई अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना है या कोई कॉलेज में डालना है, उसको साइकिल लेके देना है उसको, हाँ बर्थडे को मोटरसाइकिल देना है, प्रेम की वजह से ना। वो प्रेम के लिए वो दिन भर मेहनत करता है, हफ्ता भर चर्च गेट से लेके विरार विरार चर्च गेट तक ट्रेन में लटकते हुए जाता है कोई नौकरी करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि घर में जो बैठे हुए हैं उनके लिए मैं कुछ करूँ। बुढ़ा होने का आया तो भी बहुत मेहनत करता है, क्योंकि होता है मैं मरने के पहले अच्छा कुछ पूंजी बना के मेरे प्रेमी करने वाले लोगों को भेंट दे दूँ, मैं जब मरूंगा तो उनको कुछ मिलेगा मेरे पीछे। तो प्रेम है ना, ये सबसे बड़ी वस्तु है। इसी प्रेम के लिए भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग त्याग दिया और विदुर के घर में जाकर क्या खाया बोलो? केला नहीं खाया, केले का छिलका खाया। वो प्रेम की वजह से विदुर की पत्नी थी, वो इतना भाव विभोर हो गई कि वो भगवान को देखे इतना प्रेम आया, इतना प्रेम आया, केला छिलका छिलका निकाल के केला फेंक के छिलका आदमी दिया। छिलका फेंक के केला आदमी देने का था, लेकिन प्रेम के वश भूल गई वो और केला निकाल के फेंक दिया और छिलका देने लगा, भगवान छिलका खाने लगे। क्यों? प्रेम की वजह से। उसी प्रेम की वजह से भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए। आम आदमी भी नहीं खाता है, भगवान को तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन आम आदमी भी किसी का झूठा नहीं खाता है, केवल प्रेम होगा तो ही खाता है ना। पति पत्नी झूठा खाते हैं, माँ बेटे का झूठा खाती है, बहन भाई का झूठा खाता है। क्यों खाता है? जब प्रेम होगा तो झूठा खाना होता है। कोई दोस्त अगर कोई बहुत दोस्ती अच्छी होगी तो टिफिन में भी हाथ डालकर आप खाएंगे प्रेम से। लेकिन भगवान होते हुए भी शबरी की बेर खाए, वो भी खाए हुए खाए बेर, झूठे वो खा के देखे थे मीठा है कि नहीं और रखे थे उसको। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया था, कैसी औरत है ये, जंगली औरत है, जंगली भिल्ल जाति की औरत, इसको पता ही नहीं शिष्टाचार क्या होता है, मेरे प्रभु को खाए हुए बेर खिला रही है। और भगवान उसको बोल रहे लक्ष्मण ये बात करने का समय नहीं है, तो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें डिस्टर्ब मत करो, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ। वो तो प्रेम के भूखे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसी प्रेम की वजह से इतने बड़े भगवान जो है वो अर्जुन के ड्राइवर बने। ड्राइवर बनने का मतलब क्या होता है मालूम है? युद्ध में इतना सारा शोर रहता है कि आप ड्राइवर को बोल नहीं सकते हैं राइट में ले चलो, लेफ्ट में ले चलो, इतना आवाज़ आता है कि वो बोल नहीं सकता है, तो केवल पैर को मार कर वो सारथी को बताते हैं सारथी राइट में लो, सारथी लेफ्ट में लो, बीच में मार के बताते हैं सारथी स्ट्रेट जाओ। ये हर एक रथी जो होता है वो सारथी को इसी तरह से बताता है, उसमें कोई अपमान नहीं होता है, लेकिन वो पोजीशन केवल वो सारथी जाति का व्यक्ति ले सकता है, कोई क्षत्रिय वो सारथी नहीं बनता कभी। लेकिन प्रेम की वजह से भगवान ने अपने भक्त का सारथी बनना चुना और 18 दिन तक युद्ध किया ना भगवान ने, रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मतलब 12 घंटा कम से कम युद्ध किया ना, 18 × 12 कितना होता है बताओ? 216 घंटे। 216 घंटे लगातार भगवान ने अर्जुन के पैर से मैसेज लिया, पैर का भार सहन किया अपने ऊपर, उसका प्रहार सहन किया, गुस्सा नहीं आया उनको, प्रेम से किया। जब आप में से कितने लोग माँ है, माँ कितने लोगों को बच्चे हाथ पर पर, कभी आपको बच्चे ने लात मारा है क्या छाती पर? खाना खिलाते वक्त आप उसको खाना खिला रहे हो और वो आपको मुंह पे लात मार रहा है, हाँ तो आपको कैसा लगता है? वह अच्छा लगता है, वाह और मारो, क्योंकि प्रेम है आपका बच्चे के ऊपर। अरे आपका बच्चा नहीं भी है, आपका सिस्टर का बच्चा भी है तो भी आप उसको सहन करते हो, वो लात मारेगा आप उसको चुम्मा लोगे, ऐसा तो होता नहीं कभी ना, मैं आपको लात मारूंगा आप मेरा चुम्मा लेंगे, आप भी लात मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब प्रेम होता है तो लात मारने पर भी आप उसका चुम्मा लेंगे। प्रेम ऐसी शक्ति है, इतना सब विरुद्ध होने पर भी वो प्रेम चलते रहता है उनका। ये प्रेम को चखने के लिए और ये प्रेम का संदेश लोगों को देने के लिए दोनों चीज़ है इसके अंदर, स्वयं वो प्रेम का स्वाद चखने के लिए और उसी प्रेम का अनुभव लोगों को बांटने के लिए कृष्ण भगवान ने एक विशेष अवतार लिया जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। केवल प्रेम का संदेश देने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया। और आप और हम लोग इतने भाग्यवान लोग हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन में चार युगों का एक चक्र होता है, उसको एक कल्प कहते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार मिलकर एक कल्प होता है। और ये कल्प जो है वो 43,20,000 साल का होता है, 43,20,000 ईयर्स। ऐसे 1,000 चक्र जब होते हैं ना तो उसमें एक बार कृष्ण भगवान आते हैं। एक चक्र जो है वो चार युग का होता है। 999 चक्र जब पूरे होते हैं और 1,000वां चक्र शुरू होता है, मतलब उसमें 1,000वां सत्ययुग आता है, त्रेता आता है और द्वापर आता है, उस द्वापर में कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं। सभी द्वापर युग में कृष्ण भगवान अवतार नहीं लेते हैं, और जिस द्वापर में कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं उसके आगे वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। कितना दुर्लभ है, आप सोचो, इतने लाखों लाखों करोड़ों सालों के बाद में एक बार चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। और भाई और बहनों और मित्रों, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया वो कलयुग के अंदर हम लोग ने भी जन्म लिया है। यही वो कलयुग है, ब्रह्मा के जीवन का 1,000वां चक्र है ये। वो 1,000वां का जो कलयुग है उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ने जो अवतार लिया हुआ है 524 साल के पहले, और उसी में हम लोग ने जन्म लिया है। ये हमारा सबका परम भाग्य है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं इसको, ये कौन है और कैसा है ये काम। और सारे देवता लोग जो है वो देवता लोग के अंदर लाखों लाखों साल जीते हैं, हम लोग तो 100 साल जिएगा तो पेपर में फोटो आता है, हाँ, जयेश बंजारिया 101 साल फोटो पेपर में, उसको दिखता भी नहीं है कि कौन फोटो निकल रहा है और आगे कौन खड़ा है, लेकिन उसका फोटो पेपर में आता है, इंग्लैंड में भी आता है 101 साल के लिए। लेकिन देवता लोग लाखों साल जीते हैं और लाखों साल जीने पर भी बूढ़े नहीं होते, एकदम जवान दिखते हैं। ब्रह्मा जी जो है ना वो करोड़ों साल की उनकी उम्र है, करोड़ों खरबों साल उम्र है उनकी, लेकिन वो हमेशा जवान रहते हैं। जो चित्र आप देखते ना वो गलत चित्र है, ब्रह्मा जी कभी भी लंबी दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी नहीं होती कभी भी, वो हमेशा जवान रहते हैं, उनको बीमारी नहीं होती, वो बूढ़े नहीं होते, केवल जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बस उतना है उनका, लेकिन बीमार नहीं होते और बूढ़े भी नहीं होते, कभी सर उनके बाल काले नहीं होते, दाढ़ी सफ़ेद नहीं होती। वो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के जितने देवता लोग हैं वो सब लोग सोचते हैं इतना लाखों साल जीवन करके फायदा क्या है, उसके बाद भी मरना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस कलयुग में अवतार ले चुके हैं उस कलयुग में अगर हम जन्म लेंगे किसी न किसी बहाने, तो 60-70 साल की आयु में जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। ये प्रेम का परिणाम है, क्योंकि गौलोक धाम जो है वो भगवान का रहने का जगह है। गौलोक धाम, गौलोक वृंदावन कह सकते हैं उसको, उस गौलोक वृंदावन में केवल प्रेम ही प्रेम है, उधर कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, केवल प्रेम का धाम है वो। और उस धाम का जो प्रेम है उसको लेकर ये गौरांग महाप्रभु हमारे तुम्हारे पास में आए, उनको कोई जरूरत नहीं आने की, उनके धाम में बहुत प्रेम है, और हमारे से कई गुना लोग वहाँ पर रहते हैं जो उन पर प्रेम करते हैं, कोई द्वेष नहीं करता है, कोई ईर्ष्या भी नहीं करता है, नो ईगो क्लैश। लेकिन उस धाम का प्रेम का संदेश लेकर श्री कृष्ण भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बनकर कलयुग में आते हैं, 48 साल रहते हैं यहाँ पर, 48 साल में लीला करते हैं, मायापुर में 24 साल रहते हैं, 6 साल भारत भर भ्रमण करते हैं और लास्ट के 18 साल में जगन्नाथपुरी में रहते हैं, 2 महीना उसके अंदर वृंदावन में रहते हैं, आकर घूमने के लिए आते हैं 2 महीना और वृंदावन को बहुत आनंद देते हैं वहाँ पर, और फिर 18 साल जाकर जगन्नाथपुरी में रहते हैं, केवल लोगों को प्रेम बांटने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए। और उनको जो जो लोग मिले, जिस जिस लोगों ने उनको देखा, तो सब लोग प्रेम से विभोर हो गए, पागल हो गए प्रेम में, केवल देखने मात्र से। ऐसा उनका स्वरूप था, ऐसा नृत्य वो करते थे, ऐसा उनका संदेश था और ऐसा उनका आदान प्रदान था भक्तों के साथ में। उसको केवल देखते ही लोगों के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ आती थी। लोग गलत भावनाओं से मुक्त होकर केवल प्रेम का अनुभव करते थे। केवल देखकर उनकी मूर्ति नाचते हुए आते हुए, जब महाप्रभु जी आते थे तो उनको देखकर लोग प्रेम से पागल होते थे। जब वो एक बार ऐसे ही लाखों लोगों को लेकर नाचते हुए आ रहे थे तो उनको रोकने के लिए मुसलमान लोगों को भेजा गया, सैनिकों को, इनको रोको, ये भगवान हिंदुओं के भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है यहाँ पर बंगाल में। लेकिन जो जो लोग आए वो खुद पागल हो गए प्रेम से। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनके मन में इतनी खुशी क्यों हो रही है। वो आए थे राजा का आदेश लेकर इनको रोकने के लिए, लेकिन वो खुद नाचने लगे उसके अंदर, क्योंकि वो भगवान है। और जब भगवान फिर वो राजा के घर पे गए, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, चांद काजी, वहाँ का नवाब था वो, उसके घर पे गए तो नवाब भी उनको देखकर ऐसे भाव में आ गए, बोले आप शायद भगवान हो, निश्चित रूप से मुझे ये हृदय में यकीन हो रहा है कि आप भगवान हो। ऐसा उनका प्रभाव था। रामकेली देश के अंदर एक और नवाब था, जरासंध का अवतार था, उसका नाम था नवाब हुसैन शाह। एकदम कट्टर मुसलमान था वो, हिंदुओं का द्वेषी था। तो जब उसके देश में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको मिलने गए, और नवाब हुसैन शाह को खबर पहुंची कोई सन्यासी आया है, नाच रहा है मेरे देश में, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है। तो मंत्री बोले उसको रुकना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आकर लोगों को बहका रहा है, वो हिंदुओं के भगवान का नाम पुकार रहा है। लेकिन नवाब हुसैन शाह ने कहा कि मैंने अब तक उसको देखा नहीं है, लेकिन जैसे आप उसका वर्णन कर रहे हो मुझे हृदय में ऐसा यकीन हो रहा है ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो रूप गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो भगवान और कुछ नहीं, वो तो साधारण सन्यासी है, बस नृत्य कर रहा है। बोला आप मुझे छुपाओ मत, आप डर रहे हो कि मुझे अगर पता चला तो मैं कुछ आतंक करूंगा, इसलिए आप मुझे झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि वो भगवान है। आप समझ सकते हो, शत्रुओं के हृदय में भी उनके प्रति यही भावना थी जब दर्शन किया। क्योंकि आदमी चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, क्रिश्चन हो, बुद्धिस्ट हो या कोई धर्म का नहीं भी हो, है तो वो आत्मा ना, भगवान का अंश है वो। किसी भी कवरिंग में रहेगा वो, हाँ स्त्री कवरिंग में रहेगा, पुरुष कवरिंग में रहेगा, हिंदू कवरिंग में रहेगा, मुसलमान कवरिंग में रहेगा, काला रहेगा, गोरा रहेगा, अफ्रीकन रहेगा, लेकिन आत्मा उसकी काली और गोरी रहती नहीं है। आत्मा तो भगवान की अंश होती है, भगवान पिताजी है उस आत्मा का, और पिता और पुत्र के अंदर प्रेम होता है। जैसे मूल पिता का दर्शन हो गया तो आत्मा के अंदर प्रेम के फव्वारे निकलते अपने आप ही। बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, कोई संबंध नहीं आपका, कोई नाम मालूम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक बार देखा तो ऐसा लग रहा है वाह ये मेरा जीवन का साथी है। फिर उस पर कविता लिखते और गाना लिखते और गाते और नाचते। क्यों ऐसा होता है? प्रेम की शक्ति है वो। प्रेम की शक्ति को अनुभव करने के लिए महाप्रभु स्वयं आए कि मेरे भक्तों को मेरे पर प्रेम करने के बाद क्या अनुभव होता है, ये मैं खुद जानना चाहता हूं, इसलिए वो आए। हमको उनका धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारे ही कलयुग में जन्म लिया, थैंक यू वेरी मच, या हमको आपके कलयुग में जन्म लेने को मौका दिया। दोनों तरफ से आप थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत हमारा भाग्य है। क्यों भाग्य है? क्योंकि इसी कलयुग में आप जन्म लिया है तो कुछ ही साल में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये इस कलयुग की विशेष भेंट है आपके लिए, स्पेशल ऑफरिंग है आपके लिए, और किसी भी कलयुग में अंदर ऐसा लाभ नहीं मिलता है जो इस कलयुग में आपको मिलता है। क्योंकि महाप्रभु चैतन्य ने ऐसा ऐलान किया कि मेरे जन्म से 10,000 साल तक, 1486 में उनका जन्म हुआ था फाल्गुन पूर्णिमा में, जो अगले रविवार को आ रही है, फाल्गुन की पूर्णिमा, जिसमें हम लोग होली मनाते हैं, है ना,
1486 साल में होली के दिन उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा था कि मेरे जन्म के 10,000 साल तक इस बीच के कालावधि में जो कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का, कृष्ण भगवान का नाम लेकर शरण आएगा, वो उसी जन्म के अंत में मेरे पास पहुंच जाएगा। ऐसा वरदान दिया उन्होंने। हम लोगों को करना कुछ नहीं है। वो भगवान भी कह रहे हैं कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, नौकरी छोड़कर विरक्त होने की जरूरत नहीं है, प्रकांड पंडित बनने की जरूरत नहीं है, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं आप जहां पर भी हो वही रहो, जो भी कर रहे हो वही करते रहो, आपका धंधा है धंधा करते रहो, आपकी नौकरी है नौकरी करते रहो, आपका कोई और कोई खेती करते हो खेती करते रहो, आपका परिवार है अच्छी बात है, आपके बच्चे हैं बहुत अच्छी बात है, आपके पास प्रॉपर्टी है धन दौलत है, आपका बिजनेस है, आपका अच्छा पोजीशन है, एवरीथिंग फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारे माहौल के अंदर केवल कृष्ण का नाम स्वीकार करो और अपने जीवन को कृष्णमय बना दो, आपका गृहस्थी को, अपने पैसे को, अपने नौकरी को, सब जगह कृष्ण भावना को आप ऐड करो। इतना केवल करने से आप मेरी प्राप्ति कर सकते हो। और रही बात आपके काम वासना की, लोभ की, क्रोध की और वासनाओं की, वो सब मैं संभाल लूँगा। ऐसा भी नहीं कि आपको तपस्या करके अपने वासनाओं को नष्ट करना होगा, आपका केवल भगवान का नाम लेने से ही ये सारे चीज़ों का मैं हैंडल करूँगा। आपका अलग से आपको कोई मेहनत करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर इतनी वासना है, इतनी कामना है, इतनी मेरी महत्वाकांक्षा है, इसको सब लेकर मैं भगवान के धाम जाने कैसे योग्य बनूंगा। लो डोंट वरी, केवल हरि का नाम लो, केवल भगवान का नाम लो, लीव द रेस्ट टू मी, बाकी सारा काम मैं संभालूंगा। पिताजी माँ बेटे को क्या कहता है, बेटा तो कुछ भी मत कर, अच्छा पढ़ाई कर, अच्छी तरह से रहना, फिर क्या होगा, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो जाएगी, बताए ना इसे, और कुछ नहीं करना होता है, खाली जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आराम से रहो, खाओ पियो ऐश करो, पढ़े लिखो, घूमो, आराम से कपड़े पहनो, मेरे पास रहो बस। इतना करने से क्या होगा, सारी प्रॉपर्टी पापा के, जितने भी लैंड है, जितना भी बिल्डिंग है, जितना भी पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, सारा बाकायदा कायदे से उसके नाम पे हो जाएगा, है कि नहीं। हमारे फैमिली में ऐसे बहुत लोग हैं, इकलौते बेटे हैं, इकलौती बेटी है, शादी करके ससुराल चली गई है, लेकिन माता पिता जब गुजर जाएंगे सारा फ्लैट, सारा एवडी सब लड़के के नाम पे हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि आप मेरा खाली नाम लो बस, प्रेम से नाम लो। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई बोला हुआ है ना, आपने को मिलने वाला है ना, इसलिए हेतु से नहीं, तो प्रेम से नाम लो। प्रेम से नाम लेने से बाकी सारे जीवन के कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएंगे आपके। यही प्रेम का संदेश देने के लिए वो आए हैं। देखो कोई बड़ा आदमी होता है ना, बड़ा आदमी समझो, आपको अमेरिका का अध्यक्ष को ऐसा मन में आया कि हमारे महेंद्र गवड़ी को वहाँ से कुछ गिफ्ट भेजा जाए। हाँ, एक भाई अच्छा सोने का साउंड रिकॉर्डर, आपको उनकी मन में इच्छा हुई कि भाई भक्ति विधान में एक मैनेजर है सिक्योरिटी के, उसको मुझे गिफ्ट देना है, तो वो खुद को आने की जरूरत नहीं, उसको वो एक फ़ोन कर देगा यहाँ से कि भाई ये फ्लाइट से उसको भेजो, यहाँ से उसको पहुँचा दो, बोलो खाली प्रेसिडेंट ने दिया है। आप बोले वाह वाह, मेरे को वहाँ से पार्सल आया। लेकिन समझो पार्सल देने के लिए प्रेसिडेंट खुद आया तो क्या लगेगा आपको, अरे वाह क्या बात है यार, इतनी चीज़ तो वो खुद भी किसी को भेज सकते थे, खुद देने को आए। खुद कब देने को आएंगे, जब प्रेम रहेगा ना, प्रेम तो खुद देने को आएंगे। समझो आपके घर में शादी है, समझो तो जिनका आप पर बहुत प्रेम है, आपका जिन पर बहुत प्रेम है, उनको आप कार्ड देने को घर जाएंगे, उनके जाएंगे ना घर पे, और बाकी सबको ईमेल, एसएमएस, पोस्ट ऑफिस, रजिस्टर, कार्ड भेजेंगे और एक फ़ोन कर देंगे, कार्ड पहुंच गया ना, आप आ जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके रिश्तेदार भी नहीं होते, बड़े भी नहीं होते आपसे, लेकिन कुछ लोगों को आप घर जाके खास उनको मिठाई का बॉक्स लेके आते और कार्ड लेके आते हैं, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर प्रेम होता है। ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनको अगर अपने धाम का प्रेम का गिफ्ट आप तक देने का है तो ब्रह्मा है, शिवजी है, इंद्र है, वायुदेव है, वरुण देव है, सोमदेव, इतने मांगते उतने देवता है, और बड़ी इफेक्टिवली आपकी तरफ वो भेंट पहुँचा सकते। लेकिन स्वयं अपना धाम छोड़कर कृष्ण भगवान एक भक्त का नम्र स्वरूप लेकर आपके दरवाजे तक आते हैं और आपको पुकारते हैं कि नाम ले लो। गौलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, वो बांटने को वो स्वयं आते हैं, भेष बदल कर आते हैं, भगवान बनकर भी नहीं आते हैं, हाथ जोड़कर आते हैं। और ऐसे वर्णन दिया है शास्त्र में कि वो जाते हैं जब भी पुकारने के लिए, ले लो भगवान का नाम ले लो, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, ले लो भगवान का नाम ले लो। तो कुछ लोग उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया करते थे और फिर दोबारा दरवाजा खटखटा के उनके पैरों में पड़कर हाथ जोड़कर बोलते थे, आप 50 बार दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर सकते हो लेकिन फिर भी मेरी विनती आपको है कि आप भगवान का नाम लो। पिछले युगों में चक्र धनुष गदा लेकर लोगों का सर काटते थे वो, ऐसे करने वालों को, जिसे की हिम्मत नहीं थी भगवान के सामने ऐसे करने की। वही भगवान इस अवतार में परम दयालु बनकर हमारे और तुम्हारे दरवाजे पे आकर हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ मत करो खाली हरे कृष्ण का जप करो। आप समझ सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति आपके घर पे आएगा और आपको हाथ जोड़ेगा, बोलेगा मिस्टर गवड़ी आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, तो आप बोलेगा वो बड़ा आदमी नहीं है, वो तो फालतू आदमी रहेगा, तो मेरे घर पर क्यों आएगा वो, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन बड़े आदमी इतना नम्र बन के आपके दरवाजे पे आए और हाथ जोड़ के बोल रहा है कि 50 बार दरवाजा बंद करो लेकिन भगवान का नाम जरूर लो। मैं इस अपमान को गिनती में नहीं लूंगा कि मैंने आपने मेरे सर पर मेरे मुंह पे 50 बार दरवाजा बंद किया है, मेरा अपमान किया है, इसको मैं मेरे गिनती में नहीं लूंगा। मैं केवल एक ही विनती करूंगा कि आप भगवान का नाम लो। ये गौरांग महाप्रभु है, इनकी दया को समझना बहुत मुश्किल है। पतित पावन हेतु तव अवतार, मैं समझ नहीं सकता हूं कि आप इतने दयालु कैसे हैं, इतने पतित पावन इतने दयालु हैं आप कि सब कुछ अपना धाम छोड़कर आप नम्र बनकर हाथ जोड़कर मेरे दरवाजे पे आए और केवल विनती कर रहे हैं कि भगवान का नाम लो। ये अवतार ही हा? किसी भी अवतार में भगवान ने ऐसा नहीं किया जिस अवतार जिसने जिन्होंने इस अवतार में किया। कोई शस्त्र धारण नहीं किया, कोई चक्र नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई धनुष नहीं, कोई बाण नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम। सांगोपंगास्त्र पार्षदम, अपने भक्तों को लेकर वो मंडली में लेकर गाते हुए आपके दरवाजे पे आ रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं, आपके ज़मीर को आपके दिल को पुकार रहे हैं, कुछ मत करो, आप जहाँ पर भी है वहाँ रहकर भगवान का नाम लो, उसी में आपका मैं सारा कल्याण कर दूंगा, आपके परिवार का, आपका जीवन के अंत में गौलोक धाम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वो सब मैं कराऊँगा आपके लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये डिस्काउंट केवल इस कलयुग में है, हर कलयुग में और सत्ययुग में ये डिस्काउंट नहीं होता है, ओनली 10,000 ईयर्स और उसमें से 528 साल बीत चुके हैं और कुछ साल बाकी है, 9900 कुछ साल बाकी है, 9472 साल बाकी है। उसमें आपका जीवन शायद अभी और 50 साल बचा होगा, किसी का 10 साल बचा होगा, किसी का 20 साल बचा होगा। ये मत सोचना कि कोई बात नहीं 20 साल बचे ना, दोबारा आएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, दोबारा आके जन्म लेंगे, फिर यहाँ का मजा लेंगे, फिर जब करेंगे भगवान के नाम का, 10,000 तो बहुत साल होते हैं, प्रॉब्लम नहीं, हम लोग 10 बार भी आ सकते हैं, ये मत सोचना। इसी जन्म में बचे हुए जितने भी साल है उतने में ही आप भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं, केवल गौरांग महाप्रभु की कृपा के कारण। और वो कृपा कृपामय करुणामय गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन जो है वो इतवार को है। और जिस दिन ऐसे भगवान का जब जन्म होता है उस दिन वो भगवान बड़े दयालु होते हैं, बड़ी सबसे अधिक कृपा उस दिन करते हैं जिनको जन्मदिन होता है। तो गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन इस रविवार को है, उस रविवार के दिन बड़े दयालु हैं वो, उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हम तो बुद्धू हैं, हम तो अकलमंद हैं, हमको बिल्कुल कोई अक्ल ही नहीं है, पापी भी है हमारे अंदर, बहुत दोष भी है और हम चाहते भी नहीं कि आपका नाम ले, लेकिन फिर भी आप कृपा करना हमारे ऊपर कि हम जैसे पापी और निर्बुद्ध लोगों के दिमाग में भी कुछ प्रकाश पड़े, कुछ इच्छा उत्पन्न हो, कुछ पवित्रता उत्पन्न हो और आपका नाम के लिए हमारे मन में आकर्षण अट्रैक्शन उत्पन्न हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और वो भगवान भी स्वयं जो प्रेम देने के लिए आए हैं, स्वयं प्रेम के भूखे भी है, वो वो आपका भी प्रेम चाहते हैं, इसलिए अपना धाम छोड़कर आए हैं। अरे अगर भगवान को प्रेम नहीं चाहिए था तो वैकुंठ से पृथ्वी पर आते नहीं वो। अगर भगवान को ऐश्वर्य में आनंद आता था तो वैकुंठ में इतना ऐश्वर्य है, अनंत लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती रहती, अनंत लक्ष्मियाँ पूरे ऐश्वर्य के साथ। लेकिन वो कहते हैं कि वो सारा वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर मैं ब्रज में आया हूँ ताकि आपके घर में छाछ और मक्खन चुरा सकूँ, प्रेम की वजह से आए। एक मोरकुंड है उधर नंदगांव में, हाँ आप लोग को गया लेके नहीं गया कभी, मैं अगले बार लेके जाऊँगा। और मोरकुंड की लीला क्या है, वो मोरकुंड पे कृष्ण भगवान श्याम सुंदर जी जाते हैं वहाँ पर और गोपियाँ कहती हैं मोर बन के नाचो, तो साक्षात गौलोकेश्वर परम भगवान जो है बालक रूप में आए हुए हैं और मोर बनकर नाच कर रहे हैं। और वो कितना छाछ दे रही है, छछिया भरकर, मतलब हाथ में कितना छाछ आएगा, एक हाथ में हथेली में उतना छाछ दे रहे हैं उसको। और एक बार देते बोलते और नाच करो फिर और मिलेगा, तो हर बार इतने से छाछ के लिए परम भगवान परमात्मा कृष्ण जो है वो नाच कर रहे हैं मोर बनकर। वहाँ पर मोरकुंड बना हुआ है जहाँ पर अपने गोपियों के प्रेम की वजह से भगवान ने नाच किया था। कोई ज़रूरत है क्या भगवान को नाचने के लिए, कुछ छाछ की कमी है भगवान के पास, एक लक्ष्मी को ऑर्डर देंगे तो टनों टनों लीटर छाछ लेके आएगी वो, मतलब कितना पिलाऊं प्रेम से पिलाएगी वो। लेकिन गोपियाँ उनको नचवा रही है और वो नाच भी रहे हैं केवल एक वस्तु के कारण, वो है प्रेम। वो प्रेम इतनी पावरफुल चीज़ है कि जिसको चखने के लिए भगवान आते हैं, इतना सब होने पर भी प्रेम के भूखे रहते हूँ। इसलिए कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई जो भगवान को अट्रैक्ट करती है। बाकी भगवान को आपका धन दौलत, आपका डिग्री, आपका पोजीशन, आपका बॉडी, आपका ब्यूटी कुछ अट्रैक्ट नहीं करता है, सब उनका ही दिया हुआ है, कैसे अट्रैक्ट करेंगे उनको आप। लेकिन एक चीज़ आपकी अपनी खुद की है, वो है आपके हृदय का प्रेम। वो आपकी जो खुद की वस्तु है, जब आप उनको देना चाहेंगे तो वो लेने के लिए भाग भाग के आएंगे, क्योंकि उसके भूखे हैं वो प्रेम के। सब कुछ होते हुए भी आपके प्रेम के भूखे हैं वो, और वो उनको प्रेम देना ये हमारी भलाई है, हमारा कल्याण उस चीज़ में है कि हम उनको अपने हृदय का अपना खुद का प्रेम जो है वो उनको दे दें। तो भगवान को क्या बेर की कमी थी क्या, सब पेड़ भी उनके लगाए हुए हैं। और एक माया देवी को फ़ोन करेंगे तो सब अच्छे अच्छे बेर उनके पास में आते थे। वो भिल्ल के एक हाथ से मुँह में चखा हुआ खाने की क्या जरूरत थी, जंगल में घूमते हुए क्या जरूरत थी उसको, लेकिन फिर भी खाया उन्होंने, यही दिखाने के लिए कि वो प्रेम के भूखे हैं। और वही प्रेम है जो वो जिसके कारण आपके सामने हमारे सामने हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आए हैं, वो उसी प्रेम के कारण आप सबको हमको पुकार रहे हैं, वो आओ सब लोग आओ यहाँ पर, क्यों दुख प्राप्त कर रहे हो, क्यों इतना कष्ट प्राप्त कर रहे हो, इस दुनिया में इतनी पीड़ा है, इतना समस्या है, इतना पॉलिटिक्स है, इतना प्रदूषण है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना सब असुरक्षित भावना है, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, सब जगह पॉलिटिक्स है, कोई भरोसा नहीं किसी का, कितनी असुरक्षित अवस्था यहाँ पर हमारी है, क्यों यहाँ पर दुख भोग रहे हो आप, मेरे पास में आ जाओ, भगवान पुकार रहे हैं। केवल एक ही काम करना है, भगवान का नाम लेना है और उनका भजन करना है, और जीवन के अंत में अपने आप उनके पास पहुँच जाएंगे आप। ये संदेश देने के लिए गौलोक धाम छोड़कर 48 साल लगे भगवान यहाँ पर आए थे, और आज भी अपने भक्तों के माध्यम से आप लोगों को संदेश पहुँचा रहे हैं कि मैं आया था आपको लेके जाने के लिए। अभी भी वो पासपोर्ट छोड़ के गया हूँ आपके लिए, वीज़ा भी छोड़ के गया हूँ, जब चाहे अपना लो और मेरे पास पहुँच जाओ, फिर ना जीवन में दुख रहेगा, ना कष्ट रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, ना बुढ़ापा रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना जन्म रहेगा, ना मृत्यु रहेगा, ना युद्ध रहेगा, ना संकट रहेगा, सबसे मुक्त होकर आप प्रेम की दुनिया में जियोगे। हम लोग गाते थे ना, हमारे बचपन में गीत गाते थे, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले, वो एक पिक्चर का गाना था जो मन्ना डे ने गाया था। वो क्या बोल रहा है कवि, वो ऐसी जगह की खोज में है जहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा, प्रेम ही प्रेम होगा, सब लोग प्रेम करते होंगे, कोई असुरक्षित नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई बुढ़ापा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, हाँ कोई लोन नहीं होगा, हाँ कोई चोर नहीं होगा, खाने पीने को बहुत चीज़ होगी, सब लोग प्रेम करने वाले होंगे, ऐसी दुनिया है यहाँ, बाय द वे, खाली कविता में नहीं है, वास्तव में है। जहाँ भगवान रहते हैं वो यही दुनिया है, इसका वर्णन ये गीते में भी किया गया है। उस दुनिया में आने के लिए भगवान आपको पुकार रहे हैं। भक्ति विधान में नौकरी करने के बहाने यहाँ पर आए हो, यहाँ पर वो मैसेज उनको भेज दिया उन्होंने कि यहाँ पर लोगों को बता दो कि मैं कौन हूँ, गौरांग महाप्रभु का परिचय करा दो, और ये मेरा जो मैसेज है 16 वर्ड का मैसेज जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 वर्ड कोड वर्ड है इसको ले लो, अपना लो इस कोड वर्ड को, और जीवन के अंत में मेरे धाम में प्रवेश करोगे आप। इतनी कृपा, इतनी दया, इतनी करुणा कहाँ मिल सकती है हमको, मिल रही है, बट रही है, फिर भी हमको उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हमसे इतना दुर्भाग्य कौन हो सकता है बताओ। इतना सारा अपना धाम छोड़ के यहाँ तक आके आपको मैसेज दे रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, कोई तपस्या नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई ज्ञान कांड कर्म कांड कुछ नहीं, बोले जो करना है करते रहो, खाली मेरा नाम लेते रहो बस। इतना करने से अगर कोई आपको इतनी बड़ी लॉटरी ले सकता है तो इसके आगे और क्या कर सकता है वो आदमी, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। इतना ही उन्होंने बहुत सारा कर दिया है आपके लिए। आप लोग अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करो और उस महामंत्र को स्वीकार करो और अपने जीवन को धन्य करो, फिर आप नर्स बने रहो, डॉक्टर बने रहो, और आपका पोजीशन में नौकरी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें एक बड़ी विशेष बात है, ये प्रेम की बात इतनी विशेष है कि जैसे ही आप ये संदेश को अपनाओगे तभी से आप खुश हो जाओगे। ऐसा नहीं कि मरने के बाद खुश हो जाओगे, तब तक दुखी रहोगे आप, ऐसा नहीं है। जिस दिन अपने जीवन में आपने कृष्ण का नाम स्वीकार कर लिया उसी दिन से आपको जीवन आनंदमय हो जाएगा, और वो आनंद जीवन आप जियोगे जितना साल आपको यहाँ रहना है, और उसके बाद जब मौत का समय आएगा तो आप आनंदमय धाम में चले जाएंगे। इतनी शक्ति है इसके अंदर, तो समय व्यर्थ न गवाओ। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गौरांग का जो संदेश है उसको अपना लो। चलो किसी न किसी बहाने आप भक्ति विधान में आ गए, आपको नौकरी मिली यहाँ पर, कोई कोई अलग अलग रोल में आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको वो संदेश मिल रहा है भगवान का। एक चैनल भगवान ने यहाँ बना के रखा है ताकि आप लोग जग जाओगे और समझोगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अरे कोई लोग मरीज बनकर आए यहाँ पर, हाँ पेशेंट बनकर आए, कैंसर बैग लेकर आए, उनको भी संदेश प्राप्त हुआ उस कैंसर के माध्यम से, उस बीमारी के माध्यम से, उस जानलेवा कष्ट के माध्यम से उनको मैसेज मिला कि भैया ये सबको होना है, ऐसा नहीं कि मुझे क्यों हुआ है। ये सब लोग जो अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको बीमारी नहीं है, ये भी सब लोग एक दिन मौत के बिस्तर पे आने वाले हैं, डेथ बेड पे आने वाले हैं, है कि नहीं। आज हम लोग वो डेथ वाले लोगों की सेवा कर रहे हैं, कल हमारी भी सेवा होगी, उसमें हमको भी कंधे पर उठाया जाएगा एक दिन। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे ये मत समझना कि जो मुझे हो रहा है ये आपको नहीं होगा, ये मत समझना, एक दिन आप भी इसी अवस्था में आओगे, इस अवस्था में आज मैं हूँ। तो आज आप लोगों की सेवा करने बहाने यहाँ पर बैठे हुए हो, एक दिन आपकी भी सेवा करने का मौका लोगों को मिलेगा, क्योंकि कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटेगा। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र में जाते हुए अगर भगवान का धाम मिल सकता है तो वो इसी रास्ते से मिल सकता है। इसलिए मरना तो सभी को है, कुत्ता भी मरता है, पंछी भी मरता है, और इंसान भी मरता है, देवता भी मरता है, लेकिन मरने के बाद में भगवान के धाम में वही जीव पहुँचता है जो भगवान का नाम लेता है, उनका सहारा लेता है। वो सहारा लेने का जो मौका है वो आज आपको प्राप्त है, वो हमको प्राप्त करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। कीर्तन जब होता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए, और गाने के लिए भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये सब कंजूसी अगर करोगे तो यहीं पर सड़ते रहोगे, और इस जब भगवान का नाम चलता रहेगा तो उत्साह से भाग लोगे, फिर नृत्य करोगे, संकोच नहीं करोगे, तो इसी जीवन में भगवान की चरणों की प्राप्ति करोगे। इतना बड़ा आसान और दिव्य तरीका है ये, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बोल सकता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं करना नहीं चाहता, ऐसा बोलेगा वो, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा नहीं बोल सकता है। भगवान का नाम लेना और भगवान के नाम के कीर्तन नृत्य करना, प्रसाद खाना, कोई बोल सकता है क्या मैं नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, ये बोल सकता है, क्योंकि भगवान ने वो तरीका जो है वो ऐसा बना दिया है कि कोई भी किसी भी अवस्था में उसको अपना सकता है, ऐसा बना दिया, सिंपल तरीका, खाली हमको कहना है यस सर और उसको स्वीकार करना है। जैसे ही आप स्वीकार करोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन जीते हुए आप खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, जीवन की समाप्ति में और आनंद भरे क्षेत्र में प्रवेश करोगे। सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन की बधाई है। इतवार को आप लोग हमारे मंदिर में आइए, दिन भर हम लोग उपवास रखते हैं, शाम को अभिषेक करते हैं, कीर्तन करके नाचते हैं, गौरांग महाप्रभु के गुणगान करते हैं और इस तरह से उनकी अनंत कृपा को प्राप्त करते हैं। और वही उत्सव हमारे हॉस्पिटल में 21 मार्च को हम लोग मनाएंगे, 21 मार्च को शुक्रवार के दिन, यहीं पर वो उत्सव अभिषेक कीर्तन प्रवचन कथा महाप्रसाद का इंतजाम किया जाएगा। ताकि आप लोगों को अगर मंदिर जाने का समय नहीं है तो आपके घर पे आपके काम की जगह पर ऑन ड्यूटी ये उत्सव मनाने का मौका मिलेगा आपको। कहीं होता है दुनिया में कभी ऐसा? कौन सा ऐसा अस्पताल है जिसमें गौर पूर्णिमा का उत्सव होता है? कौन सा ऐसा अस्पताल जिसमें गोवर्धन पूजा का 56 भोग होता है, जन्माष्टमी होती है? ऐसा होता है कोई अस्पताल में? जगन्नाथ का रथ यात्रा होती है? कोई अस्पताल नहीं ऐसा। आपके काम के जगह पर ऑन ड्यूटी आपको ऐसा मौका मिल रहा है भगवान की तरफ प्रगति करने का, फ्री में, नो चार्ज। ये कृपा है भगवान की। हाँ, आपने शायद कई जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, इसके फल के स्वरूप भगवान आपको बुला रहे हैं, आ जाओ मेरे पास, हाथ फैला के बुला रहे हैं, प्लीज़ कम मेरे धाम में, आओ मेरे धाम में आके आनंद लो, दुखी रहना छोड़कर सुखी रहना, आनंद होना के लिए मेरे पास में आ जाओ। ये बड़ी कृपा है, हमको समझ में नहीं आता है कि कैसी कृपा हो रही है, क्योंकि हमको कोई चार्ज लगाते नहीं, इसलिए आपको लगता है क्या है रे, कोई फ्री में तो मतलब वैल्यू नहीं उसका। लेकिन फ्री में सबसे बड़ी कृपा हो रही है हमारे ऊपर, न केवल आपके मन पर भी हो रही है। मैं भी इस कृपा का हकदार हूँ, भागीदार हूँ आपके साथ में, कि मुझे भी इस हॉस्पिटल में नौकरी मिली है, मुझे भी ऐसा काम मिला है जिसके द्वारा मुझे भी इसका पूरा हक और पूरा भाग्य मिल रहा है। मेरा भी भाग्य है, यहाँ से कहीं और काम करने जाऊँगा शायद 4 गुना पगार मैं प्राप्त करूँगा, लेकिन ये कृपा जो है वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए चाहे 1/4 पगार मिलता रहेगा, इधर ही रहना है और वो कृपा को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत में उनके घर जाना है। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।